नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों का सामना करने के लिए जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने हरियाणा में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने चुनाव घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेने हेतु संकल्प पत्र वैन रवाना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए उनकी सीट का निर्णय संसदीय बोर्ड करेगा और हरियाणा व चंडीगढ़ में भारत बंद को समर्थन नहीं मिला, जनजीवन सामान्य रहा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों का सामना करने और इसके अवसरों का लाभ उठाने के लिए जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को पूर्व छात्र संघ के योगदान को मजबूत बनाने का भी सुझाव दिया। श्रीमती मुर्मू फरीदाबाद में जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने की। कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर भी समारोह में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा,
आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले 1300 में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी लगभग 43% बेटियां हैं। मैं चाहूंगी कि ये अनुपात और भी बेहतर हो।
राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में शुरू किए गए जेसी बोस यंग साइंटिस्ट अवार्ड और शोध के लिए सीड मनी जैसी पहलों की सराहना की। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और उसके लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की पहल कर रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी उच्च शिक्षा में हरियाणा की बेटियों की प्रगति और शोध में उनकी बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने प्रौद्योगिकी स्नातकों से देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। देश भर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वर्ष इस दिवस का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान तृतीय मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर को सुरक्षित और सहजता से उतारा गया था। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़कर लगभग $44 अरब हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था और लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया था। ये दिन छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा करके और उन्हें रोल मॉडल प्रदान करके भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए भी समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने आज हरियाणा में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और पार्टी के अन्य नेता उनके साथ उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को कल राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने श्रीमती किरण चौधरी को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा,
आज नॉमिनेशन फाइल किया है, हमारे सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है।
उन्होंने कहा कि जोगी राम सिहाग, राम कुमार गौतम, रामनिवास सुरजा खेड़ा, अनूप धानक, नयनपाल रावत और गोपाल कांडा सहित कई विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया है। उल्लेखनीय है कि 2 माह पहले श्रीमती किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी पक्का किए जाने के मुद्दे पर कहा कि अध्यादेश जारी किया गया है तथा किसी भी कर्मचारी को अगर कोई दिक्कत आएगी तो उनकी समस्या का हल किया जाएगा। वो आज पंचकुला में चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की सीट को लेकर पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वो किस स्थान से चुनाव लड़ेंगे, ये निर्णय संसदीय बोर्ड करेगा। उन्होंने बताया कि आज एक संकल्प पत्र वैन को रवाना किया गया है जो 26 अगस्त तक प्रदेश भर में जनता के बीच गांव-गांव जाकर उनके सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम किया है। अब 2024 विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र भी जनता के सुझाव के अनुरूप जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र के लिए 17 लोगों की समिति बनी है जो लोगों से बातचीत करेगी कि कैसे उनकी समस्याओं का और बेहतर ढंग से समाधान किया जा सकता है तथा प्राप्त सुझाव को संकल्प पत्र में समाहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो काम सरकार द्वारा किए गए हैं उन्हें भी लोगों के बीच में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 अगस्त को जब समिति की दोबारा बैठक होगी तो उसमें सारी बातों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुझाव देने के लिए एक विशेष नंबर दिया गया है तथा वेबसाइट के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर हाल ही के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा भारत बंद के आह्वान को हरियाणा और चंडीगढ़ में समर्थन नहीं मिला। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार जींद, रेवाड़ी, अम्बाला, सिरसा, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत बंद का कोई असर नहीं देखा गया। बाजार खुले रहे और सभी प्रकार के वाहन सड़कों पर आम दिनों की तरह चलते रहे। शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, बैंक और पेट्रोल पंप भी आम दिनों की तरह खुले रहे। चिकित्सा देखभाल, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन एवं रेल सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य सरकार ने भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए थे। कुरुक्षेत्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कुरुक्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों ने रविदास धर्मशाला से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने मतदाताओं से 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण माहौल में निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न करवाना और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। 13 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से अपना वोट बनवाने के लिए संबंधित ब्लॉक लेवल अधिकारी से संपर्क करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में नाम न होने पर फॉर्म 6 भरकर 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए संपर्क किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विकसित भारत 2047 बनने का स्वरूप उद्यमिता एवं कौशल विकास में निहित है। छात्रों को नवाचार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है, जिसके मद्देनजर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा आज विश्व उद्यमी दिवस पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा भारत के लिए निर्माण विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में बोल रहे थे। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देते हुए पेटेंट दर्ज कराने के लिए इकोसिस्टम विकसित किया गया है। अब तक 60 पेटेंट दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में उद्यमियों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पेटीएम एक छोटे स्टार्टअप से शुरू होकर शिखर पर पहुंच चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों का सामना करने के लिए जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने हरियाणा में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।